आसन से, स्पर्श से, बल्कि चिंतन से भी हमारी आत्मा के मां तीव्र वैराग पैदा हुए तो समझना चाहिए कि हाँ ये बीत रहा कुछ। क्योंकि सूर्य भगवान की रोशनी में हम बैठते हैं, धूप के मां तो गर्म हो जाते हैं, तो हमको मालूम होता है कि सूर्य भगवान में न मालूम कितनी गर्मी है। हम तो 5 मिनट समझो धूप में बैठे तो चरणों से लेकर मस्तक तक गर्म हो गए एकदम। तो ये मालूम हो जाता है ये गर्मी कहां से आई, तो उसी वक्त ज्ञान होता है कि अब गर्मी सूर्य भगवान से आई। अग्नि के नजदीक बैठते हैं तो एक प्रकार से थी उसकी भी ताप आती अग्नि के, अग्नि की शक्ति के अनुसार। और केदार जी चले जाते हैं बर्फ के ऊपर तो वहां चरणों से लेकर मस्तक तक सर्दी आ जाती, वो बर्फ का प्रभाव। इसी प्रकार से थी जिसके दर्शन भाषण स्पर्श और वार्तालाप से चिंतन से हमारे महात्माओं के लक्षण आवे। महात्माओं के जो लक्षण गीता में जो लिखे हैं, गुणातीत पुरुषों के जो लक्षण गीता में जो लिखे हैं, ज्ञानी महात्माओं के, वे लक्षण हमारे में आने लगे, समझा, तो समझना चाहिए कि हाँ ये ज्ञानी महात्मा पुरुष है। और जिनके संग से थी हमारे हृदय में हमारे भावों के बीच के मां, जो भगवान ने अपने भक्तों के लक्षण बतलाए हैं गीता की 12वीं अध्याय के अंत में। गीता की 12वीं अध्याय के मां समझो कि 13 के श्लोक से लेकर अध्याय की समाप्ति तक जो लक्षण बतलाए हैं वे लक्षण हमारे में आने लगे तो समझना चाहिए कि भाई जिनके संग से, दर्शन से, भाषण से, तो ये उसकी पक्की परीक्षा है कि ये भगवान का भक्त है। और जिसके दर्शन से हमारे शरीर के मां, मन बुद्धि में, इंद्रियों में देवी संपदा के लक्षण आने लगे, जो कि गीता की 16वीं अध्याय के आरंभ के मां 3 श्लोकों में लिखे हैं, तो ये समझना चाहिए कि ये देवी संपदा वाला पुरुष है। और जिनके संग से, दर्शन भाषण वार्तालाप से आसुरी संपदा के लक्षण हमारे में आवे, आसुरी संपदा के लक्षण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष ये आने लगे, तो समझना चाहिए कि ये देखने का तो है मनुष्य और है साक्षात राक्षस। नहीं तो हम राक्षस होते क्यों जा रहे, तो इन्हीं का तो हमारे पर प्रभाव पड़ रहा है। इसी प्रकार से थी समझो कि जिनके दर्शन से थी हमारे शरीर के भीतर में योग का ज्ञान आप बढ़े, जिनके दर्शन भाषण सफर से, तो समझना चाहिए कि भाई ये योगी है, ये योगी है। तो जैसा करे संग और तैसा चढ़े रंग, तो अपने पर रंग जो चढ़े उसको देख करके एक बार उसकी परीक्षा करनी चाहिए, वो पक्की परीक्षा, सच्ची परीक्षा है। हमारे एक बात याद आ गई, एक कहानी किस्से की बात हमारे बहुत याद आती। एक राजपूताना की एक कहानी है हमारे बीकानेर राज की। हमारे बीकानेर राज के बीच के मां जो एक प्रकार से थी, एक राजा थे, नाम तो मैं नहीं बतलाता हूं, किंतु एक राजा थे। वे राजा जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने बुजुर्गों से, बूढ़े अपने घर वालों से बुला करके, अपने कुटुंब के कोई दादा लागे, कोई परदादा लागे, कोई ताऊ, कोई चाचा, सब अपने कुलबे वालों को बुलाया और बुलाकर पूछा कि दादाजी मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, तो आप निर्भयता से जैसी बात आपके दिल में आवे सच्ची बात कहना। बोलो आपने पूछो आप, अब राजा के पदवी पर है ना, तो एक प्रकार से जब राजा की पदवी पर है तो चाहे छोटा ही हो उसको बड़ी बोली से ही बोलते हैं। तो पहला तो वह कंवर साहब ही कहते थे, अब राजा हो गए राजा कहने लगे, जब तो उसके पिता थे तब कंवर साहब थे। बोलो आप पूछो कि आपने, जो बूढ़े आदमियों ने हमारे 3 पुरुषों का राज देखा है, मेरा भी राज अभी थोड़ा दिन से, जो 10-5 वर्ष से आप लोग देख रहे हो, हरीश के पहला मेरे पिता का राज था, उसको भी आपने देखा है। उसके पहला मेरे दादे का राज था, उसको भी आपने देखा है। तो अपेक्षा करते हमारे तीनों के राज के वहां किसका राज बढ़िया, मेरा जो शासन है वो बढ़िया है, या मेरे बाप का शासन बढ़िया था, या मेरे दादे का शासन है सो बढ़िया था। बोलो कंवर साहब आप बढ़िया, आपकी परीक्षा हम लोग नहीं कर सकते, आपकी, आपके पिता की, आपके दादे की, उनकी परीक्षा करनी हमारी सामर्थ्य के बाहर है। हम तो अपने में जो बात बीती, अपने ऊपर जो असर पड़ा वो बात हम कह सकते, उससे आप अंदाजा सब लगा ली। बोले आप में बीती वो बात ही कहो। तो बोला जब आपके दादे जी का राज था तब मेरी उम्र 20 साल की थी, तो मैं एक प्रकार से धोरों के मां जो बाड़ी के टीबी होते हैं वहां से मैं आ रहा था, तो मेरे कानों में आवाज पड़ी कि कोई एक स्त्री रो रही है। मैं उसके पास में गया, वो बनियानी थी और उसके शरीर के ऊपर 10,000 का जेवर लदा हुआ था और वो एक प्रकार से रो रही थी। मैं कहा कि बहन तू क्यों रो रही है। उसने कहा, सारी बात बताई कि मैं अपने ससुराल से थी, मैं अपने पीर से थी ससुराल के मां जा रही हूं और मैं मुकलावा लेकर के अपने पीर से थी अपने ससुराल को जा रही थी। मेरे साथ के मां समझो कि बैली थी, बैली माने समझो कि बैलों की गाड़ी और समझो कि ऊंट थे और उसमें बहुत सामान 1,000 रुपयों का सामान लदा हुआ था और मेरे साथ के मां समझो कि रक्षा करने वाले भी बहुत रक्षक भी थे। किंतु कोई 20 आदमियों की एक धाड़ आई डाकुओं की और वे आकर के एकदम समझो कि हमला कर दिया, तो जितने जो आदमी थे सब भाग गए, मैं भी भाग गई। तो वे सब माल लूट करके ले गए और मैं अपने प्राणों को बचा करके इस टीबे के ऊपर सो चली आई। तो यह मेरी दशा है। तो पूछा कि तुम्हारा पीर में कौन कौन है। उसने बतलाया ये ससुराल के मां, ससुराल के भी नाम लिख करके बतला दी। वो बोला कि आपके ससुराल वाले को मैं जानता हूं। भाई तू कोई बात का फिक्र मत कर, मैं तुम्हारे घर को पहुंचा दी। तो वो कहता है कि मैं उसको साथ में लेकर के और अपनी बहन के समान समझ कर करके और उसके घर के ऊपर उसके ससुराल के यहाँ ले आया। ससुराल वाले उस खोज में थे, उनके पास पहले ही खबर पहुंच गई थी कि एक प्रकार से थी धाड़ी आए सो सब धन लूट करके ले गए और अपनी बहू का भी पता आई। अब वे लेकर पहुंचे कि या टीबू के बीच में बैठी रो रही थी और वो घरे आकर के रोने लगी, बेहाल रोने लगी और कहने लगी अपने सास को ससुरे को पति को कि मेरी बड़ी भारी दुर्दशा हुई, समझो कि जो कुछ माल मत्ता था सब लूटा गया और मैं किसी भी प्रकार से अपना प्राण लेकर के जंगल के मां धोरों के मां भाग। ये पुरुष जो है ये मेरी रक्षा करी, ये मुझको यहां लाया, अब मैं इसे का गुड़ क्या गाऊं, इसका क्या गाऊं, तो इसको आप लोग संतुष्ट कर करके भी। तो वे बोले कि महाराज आपने हमारा बड़ा उपकार किया, हमारी जो स्त्री है उसको जीव दान दिया और हमारे बहन की रक्षा करी, इसलिए हम आपको समझो कि 1,000 रुपया पुरस्कार देना चाहते हैं। उसने बोला 1,000 रुपया पुरस्कार देना चाहते हैं। तो कहता है रजपूत कि मैंने इनकार किया कि भी मैं ये कोई रुपयों के वास्ते काम नहीं किया, मैं अपना कर्तव्य समझ करके मेरे दिल के मां दया आ गई और मेरे दिल के मां ये एक प्रकार से थी न्याय प्राप्त हो गया और मैं समझा कि तू मनुष्य तेरा यह धर्म है, तो मैं धर्म समझ करके ये काम किया है, कोई इनाम के वास्ते नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश करी, अच्छा 500 रुपया ही लो कुछ तो लो, किंतु मैं 1 पैसा भी नहीं ले।
वे बेचारे लाचार हो गए और क्या उपाय कर सके जब मैं नहीं लिया, बस मैं अपने घर आ गया।
ये मेरी वृत्ति जब तक आपके दादाजी जीते रहे यही मेरी वृत्ति बड़ी रही। जब आपके दादाजी का शरीर शांत हो गया और उस वक्त के बीच के मां मेरी आयु जो है सो करीब 50 वर्ष की हो गई, उस वक्त के मां मेरे मन में ये बात आने लगी कि देखो कि उस समय में एक जो स्त्री अपने को मिली थी कैसा मौका था, उस जंगल में उसका 10,000 रुपया का जेवर उतार लेते तो रोती रहती और रोती थी, रोने में ही रोना खत खत जाता। अब तुम्हारे को कौन पकड़ता, तो वो 10,000 रुपयों का आज ब्याज होता तो कितना होता, समझा? क्योंकि 12 वर्ष से दूना हुए पाठाना के ब्याज से, 1 रुपया के ब्याज से, तो एक प्रकार से थी कितने रुपये हो जाती। तो मैंने बड़ी भूल करी, मैं इस बात के वहां गलती खाई, क्या धर्म के झंडे को पकड़ के बैठ गया मैं, तो अब वो क्या मुझको धर्म काम देता है। यदि मैं वो गहना उतार लेता तो आज मालो माल हो जाता, ऐसी मेरी भावना आने लगी। वो बात तो मैंने बुरी मालूम देने लगी विचार के द्वारा, मैं विचार के द्वारा बुद्धि के द्वारा तो वो बात मुझको बुरी मालूम देने लगी, किंतु रुपयों की आसक्ति के कारण से थी मुझको ये बात मालूम होने लगी कि ये तने भूल खाई, वो रुपया एक रूप से घर में आ जाता तो आज मौज कर। और कंवर साहब जब से आप गद्दी पर बैठे हो, अब मेरी 70 वर्ष की उम्र हुई तब आप बैठे और आज मेरी उम्र समझो कि 75 या 80 के नजदीक जाने लगी। अब जो मेरी स्त्री जो है वो मर गई, मेरे मन में ये आने लगी कि बुढ़ापे की अवस्था के बने समझा करके अपन ले आता तो स्त्री की तो स्त्री रहती और रुपया का रुपया रहती, 10,000 रुपया का गहना भी अपने हजम हो जाता और उसको समझा करके अपनी औरत बना लेते, समझा? तो मौज करते, तो अब एक प्रकार से बुढ़ापे में वो सेवा करती और रुपयों से मौज। अब कंवर साहब ये बात हमारे दिल में आने लगी, हम जो मरने चाहते ये वृद्धावस्था के बीच के माँ हमारी ये दशा है। कंवर साहब हम तो अपनी दशा आपको बतलाइए, आपके माँ कौन बड़ा छोटा है उसके निर्णय करने की हमारी सामर्थ्य नहीं, हम तो आपको बतला दिया कि आपके राज में तो हमारे मन की यह दशा है और आपके बाप के राज के माँ वो दशा थी और आपके बापे के राज के माँ वो दशा। अब किसका राज बढ़िया और किसका राज घटिया इसका अंदाजा तो आप ही लगाओ। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि जैसा करे संग और तैसा चढ़े रंग। कोयला की दराली में काला हाथ होता है, हम कोयला की खाद में गए तो हमारा कपड़ा भी थोड़ा काला हो गया। तो आप इस बात को एक ध्यान देकर के देखिए, ये बात हमने बहुत जगह अक्सर से देखी है, इसको इजमास करके देखिए कि जैसा संग किया गया है उसका असर जरूर हुआ। तो एक प्रकार से थी अपने ऊपर असर हुए उससे थी अपने को आपने उसका अंदाजा लगाना चाहिए, ये असली परीक्षा है। और हमारी बतलाई हुई जो परीक्षा है वो तो गलत है, उसी के विश्वास पर नहीं रहना चाहिए। और ये हमने युक्ति जो बतलाई है ये युक्ति ऐसी बलवान है कि इसके लिए किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। जय रामचंद्र की जय। मार मुकुट बंसी वाले की जय।
मन राम जी सदाबर दीजो हे माय मन राम जी
मारा पूरा माया
ਦਾ ਮੁਖ ਦੇਖਿਆ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਹੈ ਮਾਇਆ